الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. الحمد للہ کہ ہم اس آخری عشرے کی ان راتوں میں جاگنے کے قابل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ عشرہ دیکھا ہے. پورے رمضان کی راتوں کو اگر سال بھر کی راتوں کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو رمضان کی راتیں بہترین ہیں، اور ان راتوں میں بھی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں وہ باقی تمام راتوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں، اور ان 10 راتوں میں جو 5 odd nights ہیں، طاق راتیں ہیں، وہ باقی راتوں سے بہترین ہیں، اور ان میں جو لیلت القدر ہے وہ پورے سال کی ہر رات سے بہتر، ہر رات سے بابرکت ہے. یعنی کوئی رات پورے سال میں ایسی نہیں جیسی لیلت القدر ہے. چاہے وہ کوئی بھی رات ہو، عید کی رات ہو، حج کی رات ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی بھی رات ہو، آپ کے نزدیک اس کی اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس رات کی جتنی اہمیت ہے وہ کسی اور رات کی نہیں. اندازہ کیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ اپنی امت سے محبت تھی، کتنی شفقت فرماتے تھے، کہ آپ کو جب پتہ چلا کہ پچھلی امتوں کی تو عمریں بہت بہت لمبی تھیں اور ان کی عبادتیں ایسی ہوتی تھیں کہ 80-80 سال کی تو صرف عبادت ہوتی تھی ان کی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میری تو امت کی عمر ہی 60 سے 70 سال ہے، یہ ایوریج عمر ہوگی، 70 سے اوپر کم کم لوگ ہی جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ پھر ان کی عبادتوں کا کیا ہوگا. ظاہر ہے دوسری امتوں کی تو کوئی 200 سال، 400 سال، اتنی عمریں ہیں، کوئی 900 سال، تو ان کی عبادتیں پھر اس کے مطابق ہیں، تو جس امت کو عمر ہی چھوٹی ملی اب یہ کیسے اس میں اتنی عبادت کر پائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی امت کے اوپر خاص فضل فرمایا کہ ان کو لیلت القدر عطا فرما دی، اور آپ کو شاید یہ لگتا ہو کہ کاش ہمیں اس رات کا پتہ ہوتا تو کتنا فائدہ ہو جاتا، اگر اس رات کا پتہ ہوتا تو کیا ہر رات کوئی کوشش کرتا. اب آپ دیکھیں کہ ہر رات جب آپ کوشش کر رہے ہیں تو ایک طرح سے آپ اس رات کو تو تلاش کر رہے ہیں، اس رات کو تو پا لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اور راتوں کی عبادت کا اجر بھی پا لیں گے. ورنہ اگر اسپیسیفک مثلاً پتہ ہوتا کہ یہ 27ویں رات ہے تو کوئی بھی باقی کسی رات میں نہ جاگتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے اور ہمارے اوپر اپنا فضل فرمایا کہ ہم اور زیادہ شوق رکھیں، اور زیادہ عبادت کے اندر دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، اور اس وقت کو ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، حمد بیان کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، اور مسلسل ہماری زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہونا چاہیے، اس کی تکرار ہونی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو اس کلمہ کو ہم نے، یعنی اس دعا کو ہم نے چھوڑنا نہیں. اور دیکھیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی چھپا کے رکھا کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی یا نہیں، یا تمہاری دعا قبول ہوئی یا نہیں. اب چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم توبہ کرتے جائیں گے، اگر ہمیں بتا دیا جاتا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے تو اس کے بعد کون روتا اللہ کے آگے، کون اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا، کون توبہ استغفار کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو جن کو چھپا کے رکھا ہے نا، ان میں ہماری ہی بھلائی ہے. یہ جو فضیلت والی رات ہے جس کو قرآن کریم میں لیلت القدر کہا گیا ہے، اور پوری ایک سورت اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، سورت القدر. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قدر کا کیا مطلب ہوا ہے قدر والی رات ہے؟ دیکھیں اس کے 3 معنی ہیں. پہلا पहला माना तो कदर, जैसे हम कहते हैं किसी चीज की कदर होना, कि इसकी बहुत बड़ी कदर है, ये बड़ी कदर वाली चीज है, यानी बहुत मर्तबे वाली, बहुत बुलंदी वाली, बहुत बाबरकत, इसका मकाम बहुत ही ऊंचा है, ये बड़ी मुकद्दस रात है, बड़ी फजीलत वाली रात है। और किस वजह से है? वो आगे इसी सूरत में है ना, इन्ना अनजलना हुफी लैलतुल कद्र, तो इस कुरान की वजह से ये रात बाबरकत हो गई। दूसरा, कदर का माना क्या है? अंदाजा लगाना, जिसको हम जैसे कहते हैं तकदीर, तकदीर अल्लाह ताला का अंदाजा है ना, वो कदर से ही है। तो किस लिए हम इसको लैलतुल कद्र कहते हैं? कि अल्लाह ताला अगले साल के लिए मखलूक के जितने भी फैसले हैं वो फरिश्तों को हैंड ओवर अल्लाह ताला फरमा देता है, जैसे किसने मरना है, किसने पैदा होना है, किसने कितनी कमाई करनी है, कितनी उसको रोजी देनी है, किसको कौन सी बीमारी लग जाएगी इस साल में, या किसको सेहत मिल जाएगी इस साल में, किसकी शादी हो जाएगी, किसका क्या होगा, ये सारे फैसलों से फरिश्तों को आगाह कर दिया जाता है, पूरे साल के उनके सुपुर्द कर दिया जाता है। और कदर का तीसरा माना तंगी है। देखिए ना, आप सूरत में आता है ना, अम्मा इदा मबतलाहु फकदर अलैहि रिज़्क़हु फयकूल रब्बी अहानन, कि जब अल्लाह ताला उसका रिस्क तंग करता है तो वो इस तरह से उसको आजमाता है, तो वहां पे भी कदर का माना तंगी का है। तो तंगी किस तरह से, ये रात तंगी वाली रात कैसे है कि इतने फरिश्ते उतरते हैं इस रात में, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन उनके लिए तंग पड़ जाती है, यानी जमीन कम पड़ जाती है उनके लिए, इतनी तंग हो जाती है उनके लिए, इतनी कसीर तादाद, एक जगह पे आता है कि जितने संग्रेजे हैं इस जमीन के ऊपर, तो कितनी तादाद है पत्थरों की इस जमीन के ऊपर, इतनी तादाद में फरिश्ते उतर रहे हैं, तो अंदाजा कीजिए कि कितने फरिश्ते होंगे कि जमीन ही तंग पड़ जाए, हालांकि जमीन कितनी बड़ी है। और इस रात को, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका शर्फ क्या है, कुरान है, तो इसकी वजह से ये कदर वाली रात, मंजिलत वाली रात, तकदीर वाली रात और तंगी वाली रात, ये सारे माने कदर के हैं। और इस रात में कुरान कैसे नाजिल हुआ, कि लौहे महफूज से अल्लाह ताला ने कुरान करीम को बैतुल इज्जा तक उतार दिया। बैतुल इज्जा जो है वो पहले आसमान पे, जिसको आसमान दुनिया कहते हैं, वहां पे, एक तो आपको पता है ना सातवें आसमान पे बैतुल मामूर है, एक बैतुल इज्जा भी है, यहां तक कुरान करीम को उतार दिया गया, कि अब इसके बाद यहां से कुरान आहिस्ता आहिस्ता जमीन पे उतारा जाता रहेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वमा अदराका मा लैलतुल कदर, तो इसी से पता चलता है ये किस लिए कहा गया, इस रात की बड़ाई और अजमत बयान करने के लिए, तुम्हें क्या पता ये रात है क्या, तुम क्या जानो कि ये क्या, इसकी इस सवाल से ही पता चलता है कि इसकी कितनी अजमत है। और फिर अल्लाह ताला ने खुद इस सवाल का जवाब भी दे दिया कि ये वो रात है जो 1,000 महीनों से बेहतर है, यानी 1,000 महीनों की इबादत से बेहतर है, 1,000 महीने आप इबादत करते रहे, कितनी बेहतर है, ये हर बंदे का अपना है कि यानी क्या डबल टाइम बेहतर है, 1,000 महीनों से 2,000 महीनों के बराबर है, 3,000 महीनों के बराबर है, 10,000 महीनों बेहतर का तो कोई लिमिट नहीं है, लाख गुना बेहतर है, 1,000 महीनों की इबादत से बेहतर कहा गया ना, खैरुम मिन अल्फ शहर। तो ये हर बंदे के इखलास पे डिपेंड करता है, कितनी उसके अंदर तलब है, कितना उसके अंदर शौक है, कितनी उसके अंदर रगबत है अल्लाह ताला को राजी करने की, सवाब पाने की, कितनी हिर्स है, कितनी उसकी भाग दौड़ है। तो इस तरह से इस रात की फजीलत हमें पता चलती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी कमर कस लिया करते थे, इन पूरी 10 रातों में जागते थे, पूरी 10 रातों में, यानी कि सिर्फ ताक रातों में। तो इसमें जैसे तनाजल मलाइका, तो रूह भी है ना, इसमें फरिश्ते उतरते हैं, तो क्यों उतरते हैं फरिश्ते, क्या करने के लिए उतरते हैं, लोगों को देखने के लिए, ईमान वालों को चेक करने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो इतनी बाबरकत रात दे दी, और इनका तर्ज अमल अब क्या है, इनको रात मिली है, अब ये क्या इबादत करते हैं, या फिर अभी तक कोई गुनाहों में पड़ा हुआ है, या अभी तक कोई गफलतों में पड़ा हुआ है, या अभी तक किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि ये कौन सी रात उसको मिल गई और वो बाजारों में ईद की शॉपिंग कर रहा है। तो वो जब लोगों को इबादत में देखते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और नंबर टू, उनका क्या काम है कि वो क्यों उतरते हैं? इसलिए ताकि मोमिनों की दुआओं पर वो आमीन कहें। तो ये दुआओं की कबूलियत की भी रात है, इसीलिए तो आयशा रजी अल्लाह तआला ने जब पूछा कि मैं ये रात पालूं तो मैं क्या करूं, मैं यानी क्या कहूं मैं, क्या मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा सकते थे तो तुम कुरान पढ़ो, तुम ये करो या ये करो, आपने क्या फरमाया कि तुम ये दुआ करो। और ये किस लिए कि फरिश्ते इस रात आमीन कहते हैं दुआओं पर। तो सोचें जरा कि फरिश्तों की आमीन हो गई और ऐसी दुआ के ऊपर हो गई जो इतनी जामे दुआ है, इतनी इसके अंदर एक यानी जुमले के अंदर इतनी खैर है छुपी हुई। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन, जरा गौर कीजिए इस दुआ के ऊपर। अफुवन, अफुव का मतलब होता है कंसील करना। देखे खवातीन अपने चेहरे पे कंसीलर लगाती है ना ताकि दाग धब्बे जो है छुपा सके। अच्छा सॉरी, गफारा का मतलब होता है कंसील करना, अफुव का मतलब होता है इरेज करना। तो एक होता है गफारा, हम कहते हैं ना अल्लाह ताला मेरी मगफिरत कर दे, तो गफारा यानी उसको ढांप देना, छुपा देना। और अफुव जो है वो है डिलीट कर देना, जैसे आप डिलीट का बटन प्रेस करते हैं और उससे आपका सारा जो डेटा है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आता। तो यानी गफारा में तो ये है ना कि छुपा दिया, जैसे आपको मैंने आपको बताया कि अपने दाग धब्बे छुपा दिए, एक है कि आपके चेहरे पे दाग धब्बे ही ना हो, आपको छुपाने की जरूरत ही नहीं। तो अल्लाह ताला छुपा देता है, वो भी एक चीज है, लेकिन वो इंसान के आमालनामे में महफूज है, लिखी भी रहेगी और फरिश्ते भी उसको जानते। और एक है आफू के जिसके अंदर अल्लाह ताला बिल्कुल मिटा देता है, रिकॉर्ड ही साफ हो गया, रिकॉर्ड में ही नहीं है, इंसान कयामत के दिन देखेगा तो उसको नजर नहीं आएंगे अपने वो गुनाह। अल्लाह ताला तू ऐसे डिलीट कर देना और फरिश्तों तक को भी याद नहीं होंगे, अल्लाह ताला उन जगहों को भुला देगा जहां पे वो गुनाह हुआ, बिल्कुल उसका सफाया कर देगा उस गुनाह का। तो अल्लाहुम्मा इन्नका आफुवुन, ए अल्लाह तू इस तरह से बिल्कुल साफ कर देने वाला है, डिलीट कर देने वाला है, इरेज कर देने वाला है, मिटा देने वाला है। तुहिब्बुल अफ्वा, अल्लाह ताला तू माफी को पसंद फरमाता है, तू खुद माफ भी करने वाला है, तुझे पसंद है कि माफ किया जाए। फाफ अन्ना, तो हमें माफ फरमा दे, हमसे दरगुजर फरमा दे। तो इसका मतलब अल्लाह ताला को माफी पसंद है। आपके साथ भी अगर किसी ने कोई ज्यादती की भी है तो कीना ना दिल में रखिए, अब आप उसको माफ कर दीजिए। इसी तरह खासुल खास मैं ये कहूंगी कि जो लोग अपने वालदैन से नाराज हुए हों, अपने वालदैन से गिले शिकवे रखते हों, उनके दिलों के अंदर कोई वालदैन के बारे में बुरी बातें हों, तो आप दरगुजर कर दीजिए, क्योंकि वालदेन जो हैं वो एक आसान रास्ता है जन्नत तक जाने का। वालदेन की रजा में अल्लाह की रजा है, तो उनको नाराज करना या उनके बारे में दिल में बोझ रखना या शिकायतें रखना, गिले शिकवे रखना, या उनसे बात ही ना करना और फिर हम उसके बाद अल्लाह ताला के पास जा रहे हैं कि या अल्लाह तू हमारी बख्शिश कर दे, तो ऐसे कैसे होगा। लिहाजा वालदेन के साथ अगर किसी ने अपने ताल्लुकात बिगाड़े हुए तो वो इन रातों में वालदेन को मना ले। तो जब हम कहते हैं ना अल्लाह ताला तुझे माफी पसंद है, वो अल्लाह ताला को माफ कर देना पसंद है, हम भी इस सिफत को अपनाएं कि हम माफ कर दिया करें। हम खुद तो किसी को माफ करते नहीं, लेकिन अपने लिए इतने गुनाह करके चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सारे ही गुनाह माफ कर दे, हमारी सारी गलतियों पे एक ही दफा इरेजर फेर दे। तो खुद भी तो फिर दिल इतना बड़ा करना चाहिए कि हमारे साथ तो किसी ने क्या बड़ी ज्यादती कर ली होगी, कितनी बड़ी कर दी होगी। हम जो खुद नाफरमानियां करते हैं वो इतनी बड़ी हैं इसलिए क्योंकि हमें एक पल भी अल्लाह ताला के जो एहसानात हैं उनके आगे हमें एक पल भी उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए थी। वो कितना अजमतों वाला रब है जिसके एहसानात ही एहसानात हैं हमारे ऊपर, और तब भी हमने उसकी वैसी कदर ना जानी जैसी कदर करनी चाहिए थी। मगर अपने लिए हम सब चाहते हैं कि मेरे साथ तो कोई कुछ जरा सा भी गलत ना करे, और अगर कर दिया तो अब तो मैं कभी माफी नहीं करूंगी। तो इन रातों में लोगों को माफ कर दे और फिर अल्लाह ताला के आगे गिड़गड़ाए, और इसको दुआ को बार बार पढ़ते जाएं, बार बार पढ़ते जाएं। इसकी देखिए जामियत में एक और बात भी है, और वो ये है कि देखिए एक तो अफूफ का माना होता है, ये तो हमें पता चल गया इसका माना है माफ कर देना, लेकिन इसके अलावा इसके माने में बढ़ोतरी का माना भी है, ज्यादा होने का माना। तो यानी इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं ना कि अल्लाहुम्मा इन्नाका अफूवन तुहिब्बुल अफा फाफ अन्ना, हमारे लिए इजाफा कर दे, ज्यादा बढ़ा दे, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ना वयसअलूने कमादा युनफिकून कुल अल अफ, जो भी फालतू है इजाफी है जो ज्यादा है, तो यानी जो आप मांगते हैं अल्लाह ताला वो भी अता फरमाएगा, जो मांगने से रह गया है वो भी अता फरमाएगा, बढ़ा चढ़ा के अता फरमाएगा। तो यानी इजाफा करेगा, आपकी हर चीज में इजाफा है ना, इसके अंदर सिर्फ माल की बात नहीं है, हर चीज में। अब आप इजाफा किस किस चीज में चाहते हैं, अपनी सेहत में भी चाहते हैं, अपने और भलाइयों में नेकियों में भी इजाफा चाहते हैं, आप अपने माल में भी इजाफा चाहते हैं, जिस चीज में भी। इसमें जब कसरत का माना आ गया तो फिर आपको इजाफा इजाफा मिलेगा। और फिर तीसरी बात इसके अंदर एक और भी है, और वो माना क्या है, आफियत का माना, आफियत मिल जाना। तो जिसको आफियत मिल गई तो सभी चीजें उसको मिल गई, जिस्म में आफियत मिल गई, दीन में आफियत मिल गई, रोजी में आफियत मिल गई, औलाद में आफियत मिल गई, तो इसमें यानी कि इंसान को भलाई मिले उसमें। तो दीन में आफियत क्या है कि अब नेकी की तौफीक मिल जाना, नेकी में आगे बढ़ जाना, दीन में आगे बढ़ जाना। आखरत के मुतल्लिक आफियत क्या है कि आखरत की रुसवाई से इंसान बच जाए, वहां पे भलाइयां मिल जाए, सलामती से जन्नत में चला जाए। दीन की आफियत और दुनिया की भी आफियत, और दुनिया की और चीजों की आफियत, अपने जिस्म में भी आफियत, यही कि अल्लाह हर बीमारी से मुझे बचा के रखना। तो इसमें कितने सारे पहलू आते हैं ना, एक दुआ है लेकिन एक लफ्ज में कितना कुछ समूहाया हुआ है कि हम ये एक दुआ मांग कर और कितना कुछ पा सकते हैं। तो लिहाजा इस दुआ को मांगने के लिए ना तो किसी को पाक साफ होने की जरूरत है कि कोई पाकी की हालत में है तो वो ये दुआ मांग सकता है, जैसे कि ख्वातीन अपने मखसूस अय्याम में वो भी इस दुआ का ऐसे विर्द करें कि पूरी रात इस दुआ को मांगते रहें। इसी तरह अगर कोई और कुछ बहुत ज्यादा खड़े होकर इबादत नहीं कर सकता, बुढ़ापा है या कमजोरी है, बैठे बैठे इस दुआ को करते रहे, जिसने ये दुआ मांग ली उसने सब कुछ हासिल कर लिया। इब्ने कय्यम फरमाते हैं ना कि जब तुम दुआ मांगो लेकिन तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम्हारी जरूरियात बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या करो, क्या आइडिया है आपके पास? फिर तुम अपनी हर दुआ ये बना लो कि ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि अगर उसने माफ कर दिया तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देगा। लेकिन हमारे गुनाह ही हायल होते हैं हमारे नेमतों के पाने में, बाज चीजें हमें सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि हमारे गुनाह रुकावट बने होते हैं। तो लिहाजा इस दुआ की कसरत कीजिए, आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। जब माफी मिल गई तो सब कुछ मिल गया, बिन मांगे मिल जाएगा। और ये सोच के भी मांगिए कि फरिश्ते इस वक्त मेरी दुआओं के ऊपर आमीन कह रहे होंगे, और फरिश्ते मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं कि ये मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, कहीं टीवी लगा के तो नहीं बैठी हुई, कहीं मैं टेक्सटिंग तो नहीं कर रही, कहीं मैं और कोई सोशल मीडिया पे तो नहीं जाके वहां पे कुछ बातचीत कर रही हूँ। फरिश्ते क्या देखेंगे, क्या हम चाहते हैं कि फरिश्ते क्या देखें, हमें किस हाल में देखें, क्या हम इबादत में लगे हैं? क्योंकि वो सिर्फ खुद नहीं देखते बल्कि वो ऊपर जाते हैं जब अगले दिन, तो वहां के फरिश्ते भी इनसे पूछते हैं कि फलां फलां, वो जानते हैं कि कौन कौन था पिछले साल, क्या कर रहा था, उसकी क्या रिपोर्ट थी, उनको याद है, तो वो पूछते हैं कि फलां फलां अब इस दफा क्या कर रहा है, तो वो बताते हैं फिर कि पिछले साल वो ये कर रहा था, इस साल देखो जरा उसको कि कैसा हो गया वो। पिछले साल तो वो अच्छा था, अब इस तरह का हो गया है। या फिर वो कहते हैं कि फलां बंदा पिछले साल तो इतना कुछ खास नहीं था कर रहा, लेकिन इस साल वो बहुत अल्लाह के रास्ते में आगे, दीन में आगे बढ़ गया। तो फरिश्ते जो हैं, जो लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं दीन में, उनके लिए बख्शिश की दुआएं मांगनी शुरू कर देते हैं। और जो लोग अपने कम्मे हो गए हैं, पिछले साल तो बहुत अच्छे थे लेकिन इस साल जब फरिश्ते आए तो उन्होंने देखा कि इस साल तो बिल्कुल ये लेजी हुए में सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं। तो अब ये जाके जब उनको बताएंगे तो वो जो इनके लिए दुआएं कर रहे थे, अब वो दुआएं इनके लिए छोड़ देंगे करनी। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग कैसी हो, पिछले साल हम क्या थे और अगले साल हम क्या हो गए? बेहतर होनी चाहिए या पहले से भी गई गुजरी या पहले से कम? हम क्या चाहते हैं, फरिश्ते हमारे लिए बख्शिश की दुआएं कंटिन्यू करें या छोड़ दें? ये फैसला हमें खुद करना है कि लास्ट ईयर उन्होंने मुझे किस हालत में देखा होगा, अब मेरा ईमान बढ़ा है वहीं का वहीं है या उससे भी गया जो पिछले साल था। तो हर एक को अपनी हालत का खुद अंदाजा होगा और होना चाहिए कि इसकी बेस पे ही हम फिर अपनी इसलाह कर सकते हैं। अगर पीछे हो गए हैं तो आगे बढ़ना है। क्यों पीछे हुए, क्या मुहर्रकात हुए, कहीं ऐसी सोहबतें तो नहीं अख्तियार कर ली जिनकी वजह से हम आज पीछे हो गए? पिछले साल हम अच्छे भले थे, पिछले साल तो बहुत सारे लोग कहते ना, मैं पहले तो ऐसे ऐसे करती थी, पता नहीं अब तो मेरे से हो ही नहीं रहा, अब तो मैं ऐसे हो गई हूँ। क्यों हो गए? क्या गफलत तो नहीं छा गई? क्या दुनिया ने तो नहीं दिल में बसेरा कर लिया? इतने दुनिया के शौक और मसरूफियात तो नहीं पाल ली कि अब उतनी इबादत हो ही नहीं पाती? कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के जिक्र से दूर हो गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे दोस्त बना लिए हों जो अल्लाह ताला से दूर करने वाले? तो देखना चाहिए, रीजन जानना चाहिए। वो जाके बताते हैं, हमने फलां बंदे को सजदे में पाया, फलां रुकू कर रहा था, फलां कुरान पढ़ रहा था। तो वहां के फरिश्ते बहुत गौर से सुनते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा और आपका जिक्र आसमानों पे हो रहा हो, फरिश्ते हमारे बारे में बातें कर रहे हैं और वो एक दूसरे पे से कह रहे हो फलां फलां के ऊपर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह ताला उसको माफ कर दे, आमिली ने अर्श दुआएं कर रहे हो, इतनी अच्छी हमारी रिपोर्ट ऊपर जाए। तो इसलिए बेहतरी की तरफ जाना है और हर साल आगे बढ़ते हुए होना है, हमें पीछे नहीं जाना। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हमारी इन दुआओं को, हमारी इन इबादात को, हमारे क़याम को, हमारे कुरान पढ़ने को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके लिए फरिश्ते बख्शिश की दुआएं करते हैं, जिनके लिए फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं, जिनके घरों में फरिश्ते तशरीफ लाते हैं और उनको देखते हैं कि वो अल्लाह की इबादत में लगे हुए, और फरिश्ते खुश होते हैं और आमीन कहते हैं उनकी दुआओं पर और अच्छी जाके ऊपर दूसरे फरिश्तों के पास उनकी रिपोर्टिंग करते हैं। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमा दे। तो इसी शौक के साथ हमने इबादत करनी है, इसी बात को जहन में रख के इबादत करनी है और थकना नहीं है। थोड़े से दिन अब बाकी रह गए, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, हमें कोई ताकत और कुव्वत नहीं, हम अल्लाह ताला से ही मांगते हैं कि वो हमें अता फरमा दे और हमसे ये नेकी के कामों को करवा ले और फिर इनको कबूलियत का भी शर्फ अता फरमा दे।